सब कुछ करते हुए है, सारे संसार के स्वार्थ वाले कार्य करते हुए है। ईश्वर का महत्व दिमाग से निकल जाता है। एक बात किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिंदगी के सारे काम पैसे से होते हैं, हम सब जानते हैं और सीखे हुए हैं। चाहे माता पिता भी आपको ना सिखाएं, तब भी आप सोसाइटी में रहते हुए बिना पढ़े लिखे भी सीख जाते हैं कि पैसा संसार में जीवन जीने के लिए निहायत ही ज़रूरी है, इसके बिना जिंदगी निरर्थक है। इसी प्रकार जब हमारी किसी ऋषि से भेंट होती है, जिसको हम सदगुरु कहते हैं या अवतार कहते हैं, तो उसका जीवन देखकर, उसकी संगत में रहकर, यदि वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, वो मौका ना मिला हो, तो उसके वचन, उसकी वाणी, उसके विचार, उनका बार बार अध्ययन मनन करके और साथ में ईश्वर मार्ग पर सही रूप में चलने वालों की संगति करके आपको उसी प्रकार का निश्चय ईश्वर के बारे में होने लगता है जिस प्रकार का निश्चय संसारियों में धन के प्रति होता है। धन के बिना संसारियों का जीवन बिल्कुल निरर्थक सा है, सार्थहीन है, ऐसा उनके निश्चय में बैठा होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रयास वो इसी धन की कमाई के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार जब शास्त्रों का विवेचन हमारी समझ में आने लगता है, गुरु का मार्गदर्शन हमारी समझ में आने लगता है, तब सबसे पहले तो संसारी बनके जो मैं अपने आप को केवल देह समझने लगा था, सबसे पहले निश्चय मेरा वहां से टूटता है और मेरा अपने बारे में निश्चय यह आता है कि मैं वह हूं जो जानता है। इसके बारे में किसी को डाउट नहीं है, सब कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो देह को कहते हैं और जो विचारवान है, विचारवान का मतलब जो सत विचार करता है, वो इस वहम से मुक्त होता है। वो जानता है कि देह तो घटती बढ़ती रहती है, निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये रोग को भी प्राप्त होती है, ये मृत्यु को भी प्राप्त होती है, लेकिन जो उसने सद्विचार पढ़ा है, सुना है, जिस पर मनन किया है, वो सारा सद्विचार उसको ये बात गहराई से सिखा देता है कि जो कुछ भी कर्म तो कर रहा है, इसके संस्कार तेरे मन के अंदर बन रहे हैं और जो कुछ भी कर्म कर रहा है उसका फल भी तुझको निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है आज तूने कोई बड़ा अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म करने के पश्चात भी तुझे कोई सजा मिल गई या कोई बड़ा दुख मिल गया, तो तेरे मन में एक निराशा आती है, देखो मैंने सेवा भी की और तभी मुझे कष्ट मिल रहा है। उसके अंदर इस बात का निश्चय हो जाता है कि ये जो कष्ट मिला है ये मेरे किसी प्रारब्ध कर्म का फल है, कि मैंने जो सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, परोपकारी कर्म किया है, इसका परिणाम सुख रूप भी मुझको भविष्य में जरूर मिलेगा, ये निश्चय में बना रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीच में मौत भी तो आती है। सत्कर्म का फल भोगने से पहले ही मौत आ गई, उसका फल कहाँ गया फिर मेरा? इस बात का भी निश्चय में बना होता है कि देह की मौत मेरी मौत नहीं है, ये तो आती रहेगी, नई देह फिर मिलती रहेगी, और नई देह में मैं ही रहूंगा, जानने वाला मैं ही हूं, और इस जानने वाले की मृत्यु कभी नहीं होती। तो सांसारिक जीवन जो है वो चेतन को भी जड़ बना देता है। मैं चेतन हूं, जानने वाले को चेतन बोलते हैं, इसमें चेतना है जानने की, और बन जाता हूं मैं जड़ देह जो जानती कुछ नहीं। कर्म तो देह से होते हैं लेकिन जानती कुछ नहीं है, वो जानता मैं हूं। तो देह मेरे लिए मात्र एक मशीन की तरह से, एक इक्विपमेंट की तरह से है, लेकिन अज्ञानियों के बीच में क्योंकि मैं पला हूं, माता पिता भी अज्ञानी मिले, भाई बहन भी अज्ञानी मिले, मित्र भी अज्ञानी मिले, तो मेरा अज्ञान इतना गहरा हो गया कि मैं सबके साथ रह रहकर उन्हीं की तरह सोच सोच कर मैं पूरी तरह से देह ही बन गया। तो इसके उलट जो जीवन है, जब गुरु का संग मैं करता हूं, पूर्ण ऋषि का संग मैं करता हूं, जिसने जीते जी इस देह से छुटकारा पा लिया है। आप कहोगे कि छुटकारा कैसे पा लिया, देह लेके तो घूम रहा है। ये वास्तव में बात सत्य है, ये अनुभव की बात है, इसीलिए उसको दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा किसे कहते हैं? जो दृश्य से अलग होता है, जो दृश्य से अलग होता है उसको दृष्टा कहते हैं। एक दृष्टा उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसको दृष्टा कहते हैं। तो मेरा जो भी स्वरूप है, जिसको आत्म स्वरूप कहा जाता है, ईश्वर रूप कहा जाता है, तो मैं जो हूं उसमें स्थित जब हो जाता हूं, उस समय मुझको दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा का मतलब यह है जो हर चीज से अलग हो चुका है, जो तन से भी अलग हो चुका, इंद्रियों से भी अलग हो चुका, मन से भी अलग हो चुका, बुद्धि के निश्चय से भी अलग हो चुका, ऐसा कुछ नहीं बचा सारी सृष्टि में जिसके साथ वो एक हो। तो ऋषि जो है, जिसको हमने गुरु बनाया, वो दृष्टा रूप में स्थित होता है। और सत्पुरुषों के स्टेटमेंट से, उनकी कथनी से ये बात सिद्ध होती है। महाराज जी एक बार सरूपा जंगल से वापस लौट रहे थे, भगत जी इनके साथ थे। तो महाराज जी ने एक दिन भगत जी से कहा था, बनारसी इस समय देह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। अब हम कभी ये बात कह सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं ये मेरी छाया संग चल रही है। और गुरु क्या कह रहा है? वो देह के लिए छाया कह रहा है। हम जानते हैं छाया हमसे अलग होती है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, छाया से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। यही स्थिति ऋषि की होती है, इस शरीर से, इस देह से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। एक बार महर्षि रमन से भी पूछा किसी ने, महर्षि सत्पुरुष को अपनी देह कैसी प्रतीत होती है? कहने का मतलब यह है, वो जानना चाहता था कि गुरु का देह से कैसा संबंध होता है। तो महर्षि रमण ने एक उदाहरण देके समझाया उसको कि देखो, कोई पथिक जा रहा है उसके कंधे पर तौलिया पड़ा हुआ है, चलते चलते उसका तौलिया कहीं गिर गया, उसको बोध ही नहीं कहां गिर गया। तो ऋषि का देह से इसी प्रकार संबंध होता है, उसकी देह कभी भी कहीं गिर जाए उसको पता ही नहीं, उसका संबंध ही कोई नहीं उससे। और हम लोग की देह पर जरा सा कष्ट आ जाए तो क्या हाल होता है, कितने बेचैन होते हैं। जरा सा पैसे का नुकसान हो जाए कितने बेचैन होते हैं, जरा संतान कष्ट में आ जाए कितने बेचैन होते हैं, हर चीज हमको कितना बेचैन कर देती है। मेरी क्या दुर्दशा है ये, एक सत्पुरुष जो देह से अलग हो चुका, अलग होते हुए भी वो देह में स्थित है, वास्तव में देखा जाए वो देह में नहीं सारे ब्रह्मांड में स्थित है, क्योंकि उसकी वही स्थिति है जो आत्मा की है, जो ईश्वर की। लेकिन हमारी सोच तो लिमिटेड होती है ना, ये हमारी नेचुरल स्थिति है, इसलिए गुरु को भी हम देह करके ही देखते हैं, उसको भी लिमिटेड समझते हैं, उसकी आत्म स्थिति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए उसके बारे में बात की जाती है तो इसी प्रकार बात की जाती है कि वो देह में स्थित है, देह में स्थित होते हुए भी देह से अलग है। लेकिन एक बात कही जाती है उसके बारे में कि वो सर्वज्ञाता है, और एक बात और की जाती है उसके बारे में, गुरु जब शास्त्र की रचना करता है, गुरु के द्वारा जब वाणी प्रकट होती है, गुरु के द्वारा जब मंत्र प्रकट होता है, तो वो बुद्धि से ऊपर की चीज है। आप कहोगे ये क्या चीज हुई, सारा ज्ञान तो बुद्धि से निकलता है। लेकिन सत्पुरुष का ज्ञान उस आत्मसत्ता से निकलता है, इसलिए वो अमिट है, वो अमर है, वो ज्ञान कभी मिट नहीं सकता, और वो यूनिवर्सल भी है, सारे जगत में उस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि उससे आगे की चीज को जानता ही नहीं, वो फाइनल ट्रुथ है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। प्रकृति के जो सिद्धांत हैं वो वैदिक काल से लेकर या जब से सृष्टि बनी है या जब से आप जानते हैं वैसे के वैसे हैं, और मनुष्य के सिद्धांत बदलते रहते, मनुष्य का ज्ञान भी बदलता रहता। मनुष्य जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सीखता है, हर चीज में परिवर्तन है, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के कानून में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। इसलिए ईश्वर के कानून को अटल कानून कहा जाता है, इसलिए शास्त्र की बात को अटल बात कहा जाता है। तो मैं उस ज्ञान को सीखूं जो परिवर्तनशील है, या मैं उस ज्ञान को सीखूं जो अटल है? दुनिया का जिसमें कोई वशी नहीं चलता, तो बताइए जो गीता का ज्ञान था या जो गीता का ज्ञान है वही वैदिक ज्ञान भी? उपनिषद में गीता में कोई अंतर ही नहीं। सारे उपनिषद जितने भी प्रसिद्ध हैं, वेद व्यास ने एक ही काम किया था, क्योंकि वो भी तो दृष्टा थे, उनकी भी तो समता बुद्धि थी, जहां बुद्धि का जो विचलन है वो खत्म हो जाता है, वो समता बुद्धि सदैव एक सी रहती है। तो वेद व्यास की समता बुद्धि थी, उनकी समदृष्टि थी, उस सत्ता में स्थित थे जो समरूप से, समान रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उन्होंने सारे उपनिषदों का सार एक गीता के रूप में पिरो दिया, चाहे आप सारे उपनिषद पढ़ो चाहे एक गीता पढ़ लो, बात एक ही है। जिन्होंने दोनों चीजें पढ़ी हैं उनको इस बात का पता है। ऐसा कुछ भी उपनिषद में नहीं है जो गीता में ना हो। इसलिए गीता कोई सरल किताब नहीं है। लोग तो सब यही समझते दुनिया वाले मैंने गीता पढ़ रखी है। गीता पढ़ने वाले हजारों में से कोई शायद एक होगा जो गीता को समझता हो। तो गीता वो खुद ही तो कह रही है आपसे कि तन इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सा। ये गीता ही तो निर्णय कर रही है, वेद व्यास ही तो निर्णय कर रहे हैं, जिसको वो कृष्ण का संदेश कह रहे हैं, कृष्ण का उपदेश कह रहे हैं कि इस देह से सूक्ष्म और श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म और श्रेष्ठ मन है, मन से सूक्ष्म और श्रेष्ठ बुद्धि है। यानी इस देह में जो जानने वाली है चीज है जिसको मैं कहता हूं, मैं जानने वाला हूं, इसलिए मुझको गीता वहां पर बुद्धि करके कह रही है। और महाराज जी ने भी समताविलास में जीव को बुद्धि करके कहा है, जीव यानी बुद्धि। वहां बुद्धि का मतलब है जानने वाला, विचार करने वाला नहीं। कि बुद्धि के दो अर्थ होते हैं, विचार करने वाला भी, जानने वाला भी। तो वहां बुद्धि का अर्थ है जानने वाला। और गीता में भी बुद्धि का मतलब है जानने वाला। मन साहतु परा बुद्धि या बुद्धे परता तु सा। और उस बुद्धि से सूक्ष्म और श्रेष्ठ वह स्वयं है। वो कौन? जीवन सत्ता, आत्मा, ईश्वर, कोई नाम दे लो। ये मेरे शरीर का सीक्वेंस गीता बता रही है। गीता मैं जानता हूं लेकिन यही सीक्वेंस मुझे याद नहीं है। गीता पढ़ने वाले से पूछो तुम्हारी सोच खड़ी कहां है, क्या सोचते हो अपने बारे में। तो गीता तो ये पढ़ा रही है लेकिन आज तक गीता के मैंने पता नहीं कितने लेक्चर सुने होंगे, एक बार भी लाइफ में, पूरी लाइफ में एक बार भी किसी ने ये बात नहीं सुनाई मुझे। क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि इस बारे में सोचता ही नहीं है वो खुद सुनाने वाला, क्या सुनाएगा। वो तो महाभारत की कथाएं सुनाते हैं। जो मेरा ज्ञान है वो तो बताइए कोई नहीं रहा। इसलिए गुरु ही इस भेद को खोलता है, गुरु का शास्त्र ही इस भेद को खोलता है। क्योंकि गुरु पर ऑलरेडी आपकी श्रद्धा होती है। यदि वो वास्तव में गुरु है, वास्तव में ऋषि है, नकली गुरु भी तो है बहुत। क्योंकि दुनिया में यदि 100,000 नकली गुरु हैं तो शायद एक, मतलब कि ठीक गुरु होगा जो ऋषि है, शायद 100,000 में एक मिल जाए। ये रेशियो है आजकल नकली और असली गुरु का, तो हम तो भटक जाते हैं। ऋषि तो कहते हैं गुरु का मतलब ये है पूर्ण त्यागी। इसलिए जो भी गुरु हुआ है वो पूर्ण त्यागी मिलेगा आपको। रामकृष्ण परमहंस पूर्ण गुरु हुए, उनकी हालत ये थी कि 1 रुपए का सिक्का एक दिन विवेकानंद ने टेस्ट लेने के लिए उनके तकिए के नीचे रख दिया। जब वो लेटने लगे तो बेचैन हो गए, उठ के बैठ गए तो देखा कि वो रुपए का सिक्का है, तो समझ गए ये किसकी कारस्तानी है। तो ऋषि की क्या हालत होती है आप विचार करके तो देखो। महर्षि रमण देखो गुरु हैं, एक कॉपी बांधे रहते थे और एक तौलिया उनके पास था वजन पोषने के लिए बस। वो जब फट गया था तो कोई देख ना ले कहीं उस तौलिये को, तो छुपा छुपा के उसका गुल्ला बना के वो पेड़ की खो में रख देते थे कि देखेगा कोई फिर में देने की कोशिश करेगा तौलिया मुझे। तो पूर्ण त्यागी ही होता है गुरु, क्योंकि हम लोग जो है संसार का पैसा, संसार के वस्तुएं और संसार के करिश्मे देखना चाहते हैं, इसलिए लोग हमारा मूर्ख बनाते रहते हैं। अरे गुरु को देखने की क्या जरूरत है, इतना इतिहास भरा पड़ा हुआ है, गुरु का जीवन देखो सही, गुरु होते कैसे हैं, इतिहास गवाह है इसका, गुरु कैसा होता है। महात्मा मंगतराम जी का जीवन देख लो आप, एक जोड़ी पहनते थे, एक जोड़ी ऊपर रखा होता था कपड़ा, भगत जी ने धो दिया तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो भी बदलते थे कपड़ा वो बदल दिया, दूसरा धो दिया। और जिस समय मृत्यु हुई, ना कोई बैंक बैलेंस ना बैंक अकाउंट, 2 काली मिर्च के दाने उनके पॉकेट में निकले, कुछ था ही नहीं उनके पास, जबकि संत प्रकाश ग्रंथ वाणी की रचना कर गए। रेवलेशन है, जो वेदवाणी है वो संतावाणी है, लैंग्वेज का भेद है, वाणी एक ही स्रोत उसका आने का, दोनों को ही रेवलेशन बोलते हैं। तो गुरु का जीवन तो देखो जरा, हम आंख बंद करके गुरु धारण कर लेते हैं और पीछे लगे रहते हैं, और चारों तरफ माया दिखाई भी पड़ रही है उनकी, लेकिन फिर आंख बंद रहती है हमारी, बुद्धि की आंख बंद है, क्या दिखाई पड़ेगा आपको। जो गुरु पूर्ण त्यागी खुद नहीं है, वो पूर्ण त्याग का आपको पाठ कैसे पढ़ा सकता है। इसलिए संसार में गुरुओं की पोल खुलती है, तब भी हमारी आंख नहीं खुलती, तब भी बंद रहती है, तब भी ये कहते हैं गुरु को धोखा दे दिया गया हमारे। तो इतना गहरा अज्ञान का पर्दा हमारी बुद्धि पे पड़ा होता है, सब कुछ जानने वाले होने के पश्चात भी, अर्थात सांसारिक एजुकेशन में बड़े होशियार होने के बाद भी हम इतने महामूर्ख हैं कि हमारी बुद्धि की आंख बंद। तो ये माया का प्रताप है, इस माया के प्रताप के कारण मेरी बुद्धि यहां खड़ी हुई है कि आज तक यही नहीं सीख पाई कि मैं जीव हूं या देह हूं, मौत मेरी हो रही है या देह की हो रही है। गुरु मौत की याद की इस वास्ते नहीं कहता आपसे कि मौत से डरो, वो इस वास्ते कहता है कि देह में रहकर ही तो प्रभु उपासना करोगे, ये मानव देह चाहिए आपको प्रभु उपासना के लिए, सुख दुख के बंधन से छूटने के लिए देह मनुष्य की चाहिए आपको, और इसकी सीमित आयु है। आप कितने ज्ञानी हो, आयु का इससे कोई संबंध नहीं है। ऋषियों की 16 वर्ष में भी डेथ हो गई, ऋषियों की 32 वर्ष में भी डेथ हो गई, ऋषियों की 40 वर्ष में भी डेथ हो गई, ऋषियों की 50 वर्ष में भी डेथ हो गई। महाराज जी 50 वर्ष के थे, रामकृष्ण परमहंस 50 वर्ष के थे, महर्षि रमन 70 वर्ष के थे, और शंकराचार्य कितने साल के थे, 32 साल के थे। जगतगुरु शंकराचार्य हैं जिन्होंने 4 बार पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, 16 वर्ष तक सारे शास्त्रों की रचना कर चुके थे, बाकी 16 वर्ष उन्होंने संसार का भ्रमण किया, उस ज्ञान को फैलाया। तो क्या मनुष्य है, क्या सब कुछ है, देखो से मनुष्य की कितनी लिमिटेशंस हैं, और सत्पुरुष उसकी करनी देखो जरा। तो ये होते हैं गुरु, इसको कहते हैं गुरु। तो गुरु ही आपको आप अपने बारे में बोध कराएगा, तो इसीलिए पूर्ण गुरु का आश्रय लिए बिना सतमार्ग तय नहीं होता, ना आपका सिमरन का तरीका कभी ठीक हो पाएगा, ना शास्त्र को पढ़ने का समझने का ही तरीका ठीक हो पाएगा, ना अपने आप को जानने का तरीका ही ठीक हो पाएगा, ना आपकी संसार की जो करनी है, कर्म कैसे करें, परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, कोई भी चीज़ आपकी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। जब पूर्ण गुरु का आसरा मिलता है, उस पर विश्वास आता है, तब उसके वचनों पर विश्वास आता है, उन वचनों पर मैं गहरा मनन करने के लिए तैयार होता हूँ, और जब तैयार होता हूँ तब जाकर वो बातें मुझको स्ट्राइक करने लगती हैं। जैसे यहाँ तपोभूमि में आकर आप बार बार आपको ये मौका मिलता है ये बात सुनने का, समझने का और मनन करने का कि मैं आज तक तो मैं अपने आप को देह ही समझ के जीता रहा, लेकिन अब बार बार मुझको बताया जा रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं। रामायण में भी पता नहीं मैंने भाषणों में कितनी बार सुना होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन शायद जिंदगी में एक बार भी नहीं सोचा होगा यह है क्या। ये चौपाई कह क्या रही है, एक बार भी नहीं सोचा होगा। और ना शायद आपने कभी व्याख्यान में सुना हो, इसका सही सही विशेषण शायद रामायणी का के व्याख्यान में भी आपने कभी नहीं सुना होगा। विशेषण तो साफ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है इसलिए अविनाशी है, क्योंकि ईश्वर भी जानने वाला है, जानने वाले का मतलब वो चेतन शक्ति है, जिसमें चेतना है वही जानती है, और जीव भी जानता है। तो फिर जब जीव भी जानता है ईश्वर भी जानता है, दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर एक ही है, ईश्वर अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए वो चेतन भी है, विकार रहित भी है, सहज सुख की राशि भी है, उसका निज आनंद है, वो आनंद रूप ही है। जब जीव के भी यही गुण रामायण बता रही है, तुलसीदास जी बता रहे हैं, जीव भी अविनाशी है, चेतन भी है, अमल मल रहित अर्थात विकार रहित भी है, जीव के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, वो मल रहित है, और सहज सुख की राशि भी है, वो निज आनंद है जीव के अंदर। तो आप कहोगे ये तो रामायण झूठ बोल रही है, मेरे अंदर तो विकार भी है, मैं तो मर भी जाता हूं और मुझे दुख भी है, तो बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए अध्यात्म मार्ग हुआ क्या फिर? अध्यात्म मार्ग इस जीव के साथ जो मल लगा हुआ है, जो विकार लगे हुए हैं, जो बंधन लगा हुआ है, जीव ने गुरु का संग करके उस बंधन को समझना है और समझ के उस बंधन से निर्बंधन होना है। तो सबसे पहला जो बंधन है मेरे अज्ञानता का बंधन है कि मैं देह हूं, इसलिए सबसे पहले सत्विचार की जरूरत है मुझको, इसलिए बिना सत्संग के इस जीव का कल्याण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सारे जीवन भर मुझको जब तक मैं ज्ञानी नहीं बन जाता, सत्संग का सेवन करना पड़ता है, वो श्रवण के रूप में भी हो सकता है, अध्ययन के रूप में भी हो सकता है, मनन के रूप में भी हो सकता है। और श्रवण अध्ययन मनन के साथ साथ जैसे जैसे मेरी बुद्धि में इस ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, मेरी बुद्धि इस ज्ञान के अनुसार सोचने वाली बनती है, वैसे ही वैसे मैं अंतर साधना में उतरता हूं, क्योंकि जीव को बंधन अंदर का ज्यादा है, क्योंकि मन बाहर नहीं है, मन अंदर है, और मन में सोच कौन सी है? संसार की सोच है, सारे संसार के बारे में मन सोचता है, मन का अट्रैक्शन संसार में है। तो मन में उसके प्रति इच्छाएं उठती हैं और उन इच्छाओं के अनुसार इंद्रियां हमारी लालायित होती हैं, उस स्वाद को पाने के लिए, उस टेस्ट को पाने के लिए, उस भोग को पाने के लिए, और इंद्रियों के लालायित होने के कारण देह मेरी एक्टिव होती है, देह मेरी क्रियाशील होती है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो सारा इंस्ट्रूमेंट ये मन से लेकर तन तक ये सारा इंस्ट्रूमेंट मेरा एक्टिव हो जाता है, और ये सारा जो एक्शन है मेरा मेरे बंधन को बढ़ाने वाला है, बंधन का मतलब ही बेचैनी होता है। जैसे किसी की गुलामी बढ़ जाए, स्वतंत्रता छिन जाए, तो गुलामी तो जिंदगी डूबने वाली होती है। गुलाम का भी कोई जीवन होता है, खाना तो उसको भी मिलता है, रहने को जगह भी मिलती है, लेकिन कोई भी गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो मैं अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियां, अपने ही तन का गुलाम हूं और मेरी स्वतंत्र सत्ता है। मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, और मेरी यह दुर्दशा। कारण क्या है कि मैं अज्ञानी माता पिता के हाथ पला हूं, उन्होंने पालन, मेरा पालन पोषण करने का जिम्मा लिया, मुझे यह ज्ञान नहीं दिया, अपने ही बारे में मुझको अकल नहीं सिखाई। तो कहीं मैं 50 साल का हो गया, कहीं 60 साल का हो गया, कहीं 40 साल का हो गया, सोच मेरी वैसी ही बनी हुई है, पत्थर वाली, पत्थर ही पूछता हूं और पत्थर बुद्धि से ही, इस जड़ बुद्धि से ही मैं संसार के भोग भोगता। तो इसीलिए सारी करनी मेरी विकारों की पुष्टि करती है और सोचता हूं मैं बड़ा गुणवान हूं। मनुष्य की जितनी भी सोच है, जितना भी कर्म है, ईश्वर भक्ति को छोड़कर, ईश्वर निश्चय को छोड़कर, वो सारी की सारी 5 विकार को बढ़ाने वाली है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि तू जो करनी कर रहा है वो देह बनकर कर रहा है, और देह ये 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए देह बनकर जो कर्म किए आते हैं, कहीं ना कहीं तेरे अंदर या तो वो अहंकार को बढ़ाएंगे, या काम को बढ़ाएंगे, या क्रोध को बढ़ाएंगे, या लोभ को बढ़ाएंगे, या मोह को बढ़ाएंगे। ये सारी की सारी करनी तेरे पतन का कारण बनती है। कौन सिखाएगा मुझको ये? इसलिए पूर्ण गुरु का ध्यान करना जीवन में लाजमी है। शारीरिक रूप में उससे भेंट आती हो या ना हो, गुरु वास्तव में ज्ञान रूप है। मैंने अपनी बुद्धि को उस ज्ञान के अनुसार ढालना है, अपने निश्चय को उनके निश्चय के अनुसार बदलना है, तब जाकर मेरी बुद्धि में वो प्रकाश आता है, वो होश बना रहता है। बुद्धि का प्रकाश क्या है? बुद्धि का होश क्या? कि मैं जीव हूं, मैं अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियां, अपनी देह के बंधन में हूं। क्यों बंधन में हूं? क्योंकि ये सब विकार की पूजा कर रहे हैं, इनको स्वाद चाहिए, इनको भोग विलास चाहिए, इनको आंखों का, कानों का राग रंग चाहिए। सारा प्रोग्राम अपने को भूलने वाला है, अपने को डूबोने वाला है। जीव डूब ही तो रहा है इसमें, पैसा कमा कमा के, इंद्रियों के भोग इकट्ठे कर करके जीव डूबता चला जा रहा है। तो इसीलिए जो जीव गुरु धारण करके, गुरु धारण करने का मतलब है उसने ईश्वर को गुरु बनाया है। महर्षि रमण कह रहे हैं गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। हम देह करके गुरु जानते हैं, लेकिन जो गुरु है वो कभी देह को महत्व नहीं देता। माँ जी खुद कहा करते थे, प्रेमी, जब कोई प्रेमी उनके चरण दबाया करता था, वो प्रेमी, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। इसे अपने शरीर को वो खल्लड़ कहते, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। क्योंकि शिष्य तो शरीर को ही गुरु समझ लेता है ना, तो उस निश्चय को पूर्ण गुरु तोड़ेगा ना, अपने आप को देह बताएगा ना, ना जो शिष्य है उसको देह बताएगा, दोनों को होश में लाता है, दोनों के प्रति होश में लाता है। तो जब आपको चलते फिरते, घर के काम करते हुए, कमाई करते हुए अपने बारे में ये बोध बना रहता है, ईश्वर के बारे में बोध बना रहता है, मेरा बंधन क्या है ये बोध बना रहता है, तो आप बंधन में फंसने वाला तरीका जीने का नहीं अपनाओगे। हर दिन यही सोचोगे, इस शरीर रूपी जेल से मैं कैसे निकलूं? उसको ये शरीर जेल दिखाई पड़ती है, और इसकी उपयोगिता क्या है फिर इस जेल की? एक ही उपयोगिता है, ये जेल ऐसी है मानव देह कि ये मेरी इस निकलने में सहायता करती है। ये जेल ऐसी है कि ये जेल मेरी सहायता करती है कि मैं इस जेल से परमानेंट छुटकारा कैसे पा सकता हूं। ये कभी जेल मुझको नहीं मिलेगी, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो जब गुरु ज्ञान सीखते हो, शास्त्र विद्या को असल में आती है, तब हर वक्त आपके अंदर ये होश बना रहता है कि मैं जीव हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूं, मैं अपनी देह का मालिक हूं, मैं इनका मालिक तो हूं, लेकिन जिस प्रकार घर में वस्तुएं उनका मालिक हूं, उसी प्रकार देह में जो ये चीजें स्थित हैं इनका मैं मालिक हूं। लेकिन मालिक होते हुए भी मैं इनके बंधन में हूं, इनके कारण मेरी, इस बंधन के कारण मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं बेचैन हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। तो इसीलिए जब गुरु ज्ञान मिलता है, शास्त्र विद्या हमको सही रूप में सीखने को मिलती है, तब ये जो बंधन है इसी इक्विपमेंट का मैं सदुपयोग करके, इसी देह का उपयोग करके, इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करके, इसी मन का उपयोग करके मैं परोपकारी जीवन अपनाता हूं। अभी तो मैं दूसरों के कारण परेशान होता था, अब मेरा जीवन ऐसा होगा कि मेरे कारण दूसरे लोगों को चैन मिलता है। तो जिसके जीवन के द्वारा दूसरों को चैन मिले, फिर तो ये देवता वाला जीवन हो गया, परोपकारी जीवन हो गया। तो जीवन मेरा परोपकारी हो जाता है और याद, याद में प्रभु रमा रहता है। चाहे मैं संसारी कर्म कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, परिवार का पालन कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं कर रहा, मैं होश में जीता हूं। परिवार सारा चाहे अंधकार में जिया, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जीवन के द्वारा किसी को बुद्धि, सद्बुद्धि आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो ना आए, लेकिन मैंने तो अपनी करनी करनी है, मैंने तो अपने बंधन को से मुक्त होना ही होना है, क्योंकि इसी वास्ते ये मनुष्य जन्म मुझको दिया गया है, उस प्रभु ने मुझे मानव जन्म दिया है। मनुष्य जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित्त आए, चित्त में अभी तो संसार बस हुआ है, संसार के सुख बस हुए हैं, फिर प्रभु बस जाए मेरे चित्त में, प्रभु के सिमरन कार में ये दुर्लभ जीवन पाए, ये होश हर वक्त मेरे अंदर बना रहता है। तो बताइए, जिसकी बुद्धि बाहोश है, वो पैसा कमाते वक्त, संसार के काम करते वक्त, संसार का व्यवहार करते वक्त कभी भूल पाएगी कि मैं कौन हूं और मेरा बंधन क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, सबसे उपयोगी कर्म इस जीवन में क्या है? महाजी ने संतरा से लिखा है, इसलिए सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, तूने जीवन की जड़ ही खोद डाली, जीवन बचा कहां तेरा? तू पैसा कमाने के लिए जी रहा है, परिवार पालने के लिए जी रहा है, अरे वो तो तेरा परिवार ईश्वर पाल रहा है, तुझे नहीं पता इस बात का, जिसने पैदा किया है वो पाल भी रहा है। ये मेरी देह इस प्रकृति के बल पर पल रही है, मेरे बल पर नहीं पल रही है, और इस प्रकृति को मनुष्य नहीं चला रहा, ईश्वर चला रहा है। इसमें ऑक्सीजन का रेशियो बिगड़ जाए, बचूंगा मैं? पानी की कमी हो जाए, बचूंगा मैं? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाए, बचूंगा मैं? मनुष्य तो उल्टे ही काम कर रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, मेरे लिए मौत का सामान तैयार कर रहा है, ईश्वर बैलेंस किए हुए, किस वहम में जी रहा हूं कि मैं परिवार पाल रहा हूं? मुझको भी ईश्वर पाल रहा है, परिवार को भी ईश्वर पाल रहा है, और सबका पालन वो उनके प्रारब्ध के अनुसार कर रहा है। मैं घर छोड़ के भी निकल जाऊं ना, परिवार फिर भी पलेगा। इसलिए जिसके अंदर ईश्वर निश्चय होता है, वो शास्त्र के सिद्धांत का, गुरु के मार्गदर्शन का उल्लंघन नहीं करता। जब संत अवलास पढ़ेगा, यदि महाराज जी का शिष्य है तो ध्यान से पढ़ेगा क्यों ये बात लिखी हुई है, सिमरन से लापरवाही करनी है, अपनी मूल बर्बादी करनी है। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, ये संत रविदास के वचन है। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। जो हाईएस्ट दर्जे का कर्म है वो मैं पैसा कमाने के लिए त्याग कर दूं, उसका कहां मेरी बुद्धि खड़ी हुई है। पैसा मैं मर्यादा में कमाऊंगा, पैसे की कमी है तो टाइट होकर अपना जीवन यापन करूंगा, लेकिन सिमरन से लापरवाही नहीं करूंगा, उससे समझौता नहीं करूंगा। ये काम कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में ईश्वर का निश्चय पक्का होगा, जिसकी बुद्धि में निश्चय यह होगा, जिस प्रकार इस देह के अंदर मेरा मन स्थित है उसी प्रकार मेरा ईश्वर भी इस देह के अंदर स्थित है, जो इस देह के जीवन को चला रहा है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। इसलिए मेरा ये विवेक, मेरी ये सतबुद्धि मुझको हर वक्त याद दिलाती है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो कोई चीज है वो ईश्वर है। वो जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम मैंने देना है, उसके लिए टाइम की कमी नहीं करनी है। मैंने समय का एडजस्टमेंट संसारी कामों में करना है, वहां समय पूरा देना है। उस निश्चय के साथ वो मानव जीवन जीता है। तो एक दिन इस देह में रहते रहते वो अंतर्यामी ईश्वर से मिल जाता है, उसका बोध उसको हो जाता है। और यदि मोक्ष नहीं भी मिला, खुद पूर्ण ईश्वर रूप ना भी हो पाया, तो अगला जन्म तो तैयार है, लेकिन नई देह में ये सारे संस्कार बचपन से ही मुझको ईश्वर भक्ति के मिलते हैं, तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर वो सारा ज्ञान मेरी बुद्धि में पहले से ही संस्कार रूप में मौजूद है। सारी दुनिया तो विरोध करती है उसका, बल्कि उल्टा, कहां चला तो, लेकिन वो अपना रास्ता अगले जन्म में पूरा करके मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। तो इसीलिए यदि आपके अंदर इस ज्ञान का बोध बना रहता है, यदि आपने मनन किया है, वास्तव में शास्त्र का स्वाध्याय किया है, तो ये कुछ कहने की बात नहीं है कि मैं क्या करूं। आप खुद ही ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे गंभीरता से, लापरवाही नहीं करोगे, फिर आपको अफसोस नहीं होगा आज मैंने संसार में पैसा कम कमाया तो बड़ा घाटा हो गया, बड़ी बेचैनी हो गई अंदर। अरे प्रभु ने जितना देना था दे दिया, जिंदगी का असली काम तो हो गया। खुशी उस बात को, जिंदगी का असली काम तो हो गया, आज सिमरन तो हो गया मेरा। तो दैनिक जीवन में वो प्रेम से सबके साथ रहता है, प्रेम से जीता है, सभी दुखी हैं, सभी बेचैन हैं, इसे ज्यादा भाषा नहीं देता उनको, अज्ञानी जीव है वो, तो इसलिए प्रेम से पालन करता है, खुद अपने जीवन में संयम रखता है, और उसके जीवन को देखकर लोगों में भी संयम कहीं ना कहीं पैदा होता ही है। और जो कुछ भी सुख दुख आते हैं जिंदगी में, बनना बिगड़ना है, सक्सेस फेलियर है, वो सब ईश्वर आज्ञा में देखता है। हम लोग डरते हैं, सतमार्ग पे चल रहा हूँ, ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, सिमरन में समय पूरा दे रहा हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी ठीक से चल नहीं पा रही है, बच्चे असंतुष्ट हैं, पत्नी असंतुष्ट है, परिवार असंतुष्ट है, ये वो नहीं देखा करता। वो ये देखा करता है मैं शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन यापन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ईश्वर भक्ति कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसलिए महाजी जब कह रहे हैं कि स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांध कर, तो स्वार्थ में भी वक्त दे और परमार्थ में भी वक्त दे, ये तो नहीं कह रहे केवल ईश्वर भक्ति करता चला जाए, मैं सीमा तोड़ रहा हूं। यदि मनुष्य को 8 घंटे रोज पैसा कमाना चाहिए तो 8 घंटे कमाओ, कौन मना करता है, 8.5 घंटे क्यों कमाते हो? जितनी 8 घंटे में कमाई होती है उसमें गुजारा करना सीखो। मैं नकल करता हूं संसार की, 16 घंटे पैसे कमाता हूं, 12 घंटे पैसे कमाता हूं, फिर स्टेटस बनाता हूं अपना दुनिया की नकल करके, तो स्टेटस बना लो फिर, तुम भूल रहे हो कि तुम जीव हो, तुम भूल रहे हो कि अपने ही मन के बंधन में हो, अपनी ही इंद्रियों की गुलामी कर रहे हो, वो तुमको तड़पा रही है। तड़पते रहो, 10 जन्म तड़पते रहो, ऐसी तड़पते तड़प तड़प के मरते रहो, कौन रोक सकता है तुमको? क्योंकि अपना कल्याण चाहिए, सही जीने का तरीका यदि चाहिए आपको तो गुरु की बात माननी ही पड़ेगी, शास्त्र वचन पर मनन करना ही पड़ेगा। तो वहां से निर्णय यही आता है कि मैं जीव हूं, मैं अपनी ही इंद्रियां, अपना ही मन, अपने ही तन के बंधन में हूं, तो इस बंधन से मुक्ति के लिए मुझको ये मानव देह दी गई है। और मुक्ति रूप है कौन? वो ईश्वर मुक्ति रूप है, वो इस देह के अंदर मौजूद है। इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं? अरे ईश्वर मेरे संग रह रहा है और मैं उससे विमुख हूं, कहां गई है मेरी बुद्धि? तो इसलिए ये मौका मैं नहीं गंवा सकता। तो ये विचार मेरे अंदर जब रहता है तो फिर शिकायत करने का कोई अवसर बचता नहीं। कम पैसे में भी गुजारा कर लेता हूं, कम कमाई में भी गुजारा कर लेता हूं, मैं ईश्वर के प्रोग्राम को छोड़ता नहीं। लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम परिवार की जो जिम्मेदारी है, परिवार का जो कर्तव्य है वो छोड़ो। सामाजिक कर्तव्य की भी बात वो किया करते थे। तो जो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बोध से मैं उस कर्म को करता हूं, लेकिन मर्यादा में रहते हुए करता हूं। इस आधार पर नहीं करता कि जहां जरूरत पड़ी तो परमार्थ का प्रोग्राम छोटा कर लिया, स्वार्थ का बढ़ा लिया। ये चाल नहीं होती, होश वाले व्यक्ति की ये चाल नहीं होती। तो मर्यादा में रहते हुए जब मैं मेरी बुद्धि में जो सतनिश्चय बैठा हुआ है, जो ज्ञान शास्त्रों का बैठा हुआ है, उसके अनुसार जब मैं हर वक्त सोचता हूँ, तब इस प्रकार के संशय मन में नहीं आते, इस प्रकार का अनिश्चय मन में नहीं आता कि मैं संसार के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे थोड़ा कम किए मैंने पूजा, अपने समय पूरा दिया तो मेरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, परिवार की ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, इस प्रकार की डांवाडोल स्थिति मेरी नहीं होती। निश्चयात्मक बुद्धि मेरी बन जाती है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसके पास सतबुद्धि है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है, डांवाडोल बुद्धि नहीं होती कि जहां चार कष्ट आए घबरा गए, अरे ईश्वर मार्ग पे चल के मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं परिवार के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। तो यदि बुद्धि डांवाडोल होती भी है तो फिर पढ़कर देखो गुरु का शास्त्र, वहां क्या लिखा हुआ है। हो सकता है मैंने कहीं समझने में गलती की हो, प्रोग्राम बनाने में गलती की हो, फिर पढ़कर देखो क्या लिखा हुआ है। तो बार बार अपनी बुद्धि को उस शास्त्र के वचन के अनुसार शुद्ध करो, तैयार करो, तो सारी शक्ति आपको वहीं से मिलेगी। तो इसलिए ये समता विलास आज के युग में आई है, ऐसा शास्त्र जो इतना डिटेल्ड है कि आज तक धरती पर कभी आया ही नहीं ऐसा शास्त्र। यही तो ऋषियों की देन होती है। गीता कब लिखी गई? जब प्रेस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिंदा है नहीं आज तक। तो ये ईश्वर के शास्त्र हैं, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन हम हमारे वक्त में आए, हम इसी कीमत नहीं समझते। कहते हैं कठिन है, बस एक एडजेक्टिव लगा दिया, कठिन है, रख दिया किनारे पर। पैसा कमाना सरल है, 20 साल तक पढ़ाई करना सरल है क्या? वो कठिन काम लोग कर रहे हैं, करने को तैयार है, लेकिन एक पुस्तक समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझते। सत्य है, उसकी जरूरत नहीं समझते। तो हर वचन उसका हीरा है, जीवन के लिए कीमती है, अनमोल है। ये शास्त्र हमारे वक्त में प्रकट हुआ है, समझें। यदि समता विलास समझ ली तो गीता भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा गीता में कुछ है ही नहीं जो समता विलास में ना हो। इसीलिए गुरु वचन पर विश्वास रखें, ताकि सद्बुद्धि हमारी कायम रहे। और यदि सद्बुद्धि कायम रही तो संसार में जो कर्म करते वक्त अनिश्चय की हालत हमारी बन जाती है, उसे बचे रहेंगे और बुद्धि में ये ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम।